ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। दुग्ध उत्पादक किसानों को बकाया भुगतान करने के लिए दुग्ध विकास संस्थान को तत्काल 60 करोड़ रुपए का कर्ज देने की सरकार ने दी स्वीकृति। संघीय निजामती विधेयक पर संसदीय समिति ने आज विचार विमर्श हुआ शुरू। हरितालिका तीज के अवसर पर पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए कल सुबह 3 बजे से ही खोले जाएंगे चारों दरवाजे। और अमेरिका के जॉर्जिया हाई स्कूल में हुई गोलाबारी में 4 लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दुग्ध उत्पादक किसानों को भुगतानी देने के लिए दुग्ध विकास संस्थान को तत्काल 60 करोड़ रुपए ऋण भुगतान करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज शाम हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने किसानों को आर्थिक वर्ष 2081-82 में भुगतान देने को बाकी रकम भुगतान देने और प्रविधि सुधार तथा व्यवसाय विस्तार के लिए अर्थ मंत्रालय को ऋण देने की स्वीकृति देने का निर्णय किया। यह जानकारी बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग ने दी। इसी तरह मंत्रिपरिषद बैठक ने पेरिस पारा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली नेपाल की तेक्वांदो खिलाड़ी पलेश्वा गोवर्धन को 65 लाख रुपए नगद सहित सम्मानित करने का निर्णय किया है। साथ ही बैठक ने पलेश्वा गोवर्धन के प्रशिक्षक को 5,85,000 रुपए और टीम व्यवस्थापक के लिए 2,92,000 रुपए नगद सहित सम्मान करने का निर्णय किया है। बता दें कि मंत्री बैठक के अन्य निर्णयों को कल दोपहर 3 बजे संचार मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी कराई जाएगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि आवधिक निर्वाचन से ही राज्य में जनता की पहुंच और स्वामित्व स्थापित होगा। राष्ट्रपति पौड़ेल के साथ सार्क देशों के निर्वाचन निकायों के साझा मंच के 12वें सम्मेलन के क्रम में नेपाल आए मंच के सदस्य देशों के प्रमुख निर्वाचन आयुक्तों के साथ आज शीतल निवास में हुई भेंट में राष्ट्रपति पौड़ेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आवधिक निर्वाचन लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। दक्षिण एशियाई देशों के निर्वाचन प्रवर्धन करने वाले निकायों को साझा मंच फिम्बोसो का 12वां सम्मेलन आज काठमांडू घोषणा पत्र जारी करते हुए संपन्न हुआ। काठमांडू घोषणा पत्र में फिम्बोसा अंतर्गत के निर्वाचन प्रवर्धन निकायों की संस्थागत और मानवीय क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ काम करने, एक और दूसरे के ज्ञान, सांदर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनों और अनुसंधान प्रकाशनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर सदस्य निकायों के बीच पारस्परिक सहयोग और शिक्षण को और अधिक प्रतिबद्ध करने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि 12वें सम्मेलन में फिम्बोसा के नए अध्यक्ष के रूप में नेपाल को चुना है। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन में फिम्बोसा के सदस्य राष्ट्रों में से नेपाल, भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स के निर्वाचन आयोगों के प्रमुखों और उच्च अधिकारियों की उपस्थिति थी। संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक पर संसदीय समिति में आज विचार विमर्श शुरू हुआ। प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने आज संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन और सेवा की शर्त संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक 2080 पर सैद्धांतिक विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने कहा कि देश की प्रशासनिक प्रणाली को शासकीय व्यवस्था अनुसार सुव्यवस्थित, कार्यात्मक और परिणाममुखी बनाने के लिए विधेयक जरूरी है। ज्ञात हो कि संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक विक्रम संवत 2080 फागुन 21 में संघीय संसद में दर्ज हुआ था। विधेयक पर 124 समूहों में सांसदों ने 1583 संशोधन प्रस्ताव दर्ज किए हैं। दर खाने के साथ हरितालिका तीज पर्व की आज औपचारिक शुरुआत हुई है। विशेषकर नेपाली नारियों द्वारा मनाई जाने वाली हरितालिका के एक दिन पूर्व यानी भाद्र शुक्ल द्वितीया के महिलाओं के पीहर से दर खाने के लिए बुलाए जाने की परंपरा है। व्रत के दिन ऊर्जा प्राप्त होने के उद्देश्य के साथ व्रत से एक दिन पहले विशेषकर दूध से बने खाद्य गेहूं की रोटी और घी खाने का प्रचलन है। इसी बीच हरितालिका तीज पर्व के अवसर पर पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए सभी तैयारी पूरी होने की जानकारी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ने दी है। लाइन व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य शिविर और निःशुल्क पानी वितरण लगायत की गई तैयारी के बारे में आज कोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी कराई। बता दें कि इस साल हरितालिका तीज के अवसर पर दर्शन के लिए कल सुबह 3 बजे से ही पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दरवाजे खोले जाएंगे। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि लैंगिक समानता के लिए केवल कानूनी व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है। आज काठमांडू में लैंगिक समावेशीकरण पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि लैंगिक समानता के लिए सभी को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि सभी दलों की सहमति से संविधान में संशोधन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। कंचनपुर में आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गृहमंत्री ने कहा कि सभी की सहमति से जारी किए गए नेपाल के संविधान की समय रहते गहन समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले का गठबंधन आगामी चुनाव तक जारी रहेगा और दोनों दलों के बीच समझौते के मुताबिक नेतृत्व बदला जाएगा। मंत्री लेखक ने बताया कि सहकारी से संबंधित कुछ विवादों की जांच संसदीय समिति कर रही है और अन्य सहकारी लगायत मुद्दों पर कानून के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। गृहमंत्री ने प्रमुख परियोजनाओं जैसे दोधारा चांदनी, ड्राईपोर्ट, महाकाली कॉरिडोर, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र और हुलाकी सड़क लगायत के निर्माण में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हेलो,
के गर्दै छौ?
हाम्रो बिहेको शपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग।
ए हो र, अनि मेरो लागि के किन्दै छौ?
बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले। मलाई त कस्तो लाज लाग्छ, भरे राति बोलौँ न ल।
अहिले फ्री वाइफाई छ के अफिसमा, बुझ न, भरे कसरी गर्नु?
मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजे देखि बिहान 6 बजे सम्म।
ए हो त है, मेरो वाइफ त कति स्मार्ट। अब त रातै आउँछ।
अब रात तपाईको नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि हाल के दिनों में बढ़ रही डेंगू और हैजा जैसी महामारी संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के तीनों तह कड़ी मेहनत कर रही है। प्रतिनिधि सभा के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज की बैठक में मंत्री पौड़ेल ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ नई योजनाएं बना रही है। बैठक में सांसदों ने नेपाल रेडक्रॉस सोसायटी में भ्रष्टाचार पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट को अविलंब सार्वजनिक करने, देशभर के सरकारी अस्पतालों में स्तन कैंसर की जांच मशीनों की व्यवस्था करने और मरीजों के लिए ई टिकट की व्यवस्था करने का सरकार से आग्रह किया। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने अरुण तीसरी जल विद्युत परियोजना के प्रसारण लाइन के विस्तार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का निर्देश किया है। अरुण तीसरी जल विद्युत परियोजना निवेश बोर्ड और 5 जिलों के प्रमुख जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में मंत्री खड़का ने सभी को समस्या के समाधान पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्देश किया। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराई ने कहा कि जो छात्र छात्रवृत्ति अध्ययन के लिए रूस जा रहे हैं उन्हें केवल अपने माता पिता की अनुमति से ही जाने की अनुमति दी जाएगी। आज मंत्रालय में छात्रवृत्ति के लिए रूस जाने वाले छात्रों और अभिभावकों के साथ चर्चा में मंत्री भट्टराई ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को तभी भेज सकते हैं जब वे मंत्रालय को लिखित अनुमति और प्रतिबद्धता देंगे। मंत्री भट्टराई ने कहा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान छात्रों को उनके माता पिता की सहमति से ही परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जाने की अनुमति मिल सकती है। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसे द्वन्द पीड़ित संघ ने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आरोप में पदाधिकारी नियुक्ति पीड़ित केन्द्रित होकर करने की मांग की। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री ओली को आज ध्यानाकर्षण पत्र सौंपते हुए संघ ने सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग और जबरन लापता किए गए व्यक्तियों की जांच आयोग में राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि पीड़ितों की भावनाओं को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने का आग्रह किया। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद पुष्पकमल दहाल प्रचंड देश को श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने के लिए लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जो कि आपत्तिजनक है। आज प्रेस चौतारी नेपाल कर्णाली प्रदेश द्वारा सुर्खेत विमानस्थल पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में महासचिव पोखरेल ने ये बात कही। उदयपुर की कटारी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 सोरुंग छबीसे में मां बेटे की हत्या हुई है। वार्ड कार्यालय के नजदीक किराना दुकान चलाती आ रही लगभग 40 वर्षीय निर्मला थापा और उनके बेटे करीब 6 वर्षीय आरुष थापा के शव दुकान में ही पाए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के जॉर्जिया हाईस्कूल में गोलाबारी की घटना सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि जॉर्जिया के अपालाची हाई स्कूल में गोलाबारी में 4 की मौत हो गई, एक व्यक्ति हिरासत में है। पुलिस ने बताया कि इस गोलाबारी की घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कानून प्रवर्तक अधिकारियों ने कहा कि स्कूल में कक्षाओं को हाल ही में शुरू किया था। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक्स पर पोस्ट किया कि जॉर्जिया के विंडर में अपालाची हाई स्कूल में गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुग्ध उत्पादक किसानों को बकाया भुगतान करने के लिए दुग्ध विकास संस्थान को तत्काल 60 करोड़ रुपए का कर्ज देने की सरकार ने दी स्वीकृति। संघीय निजामती विधेयक पर संसदीय समिति में आज विचार विमर्श हुआ शुरू। हरितालिका तीज के अवसर पर पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए कल सुबह 3 बजे से ही खोले जाएंगे चारों दरवाजे। और अमेरिका के जॉर्जिया हाईस्कूल में हुई गोलाबारी में 4 लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।